Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ishavasyamidam sarvam yat kincha jagatyam jagat. तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। कई दिन से इस यजुर्वेदीय श्रुति का विचार चल रहा है। मनुष्य ने इस जीवा जगत में कैसा जीना चाहिए, ये इस वाक्य के द्वारा बता दिया, इस मंत्र के द्वारा श्रुति बता रही है। परमात्म भाव से जो भी कुछ आप देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, करते हो, इन सभी में परमात्म भाव हो तो व्यवहार तुम्हारा उत्तम होगा, जीवन की सार्थकता होगी। क्यों करना चाहिए भावना? तो श्रुति कहती है कि इसमें परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा की भावना करना चाहिए, क्योंकि इसमें सत्य जो है वो परमात्मा ही है। परमात्मा की भाव करने का अर्थ होता है सत्य की भावना धारण करना। जीव सत्य को जब धारण करता है तो असत्य का दुख मिट जाता है और सत्य का आनंद प्राप्त होता है। सत्य, हम झूठ की आदत पड़ी हुई है इसलिए सत्य कठिन लगता है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों की आदत हमें जो है वो असत्य को ही ग्रहण करने की, असत्य को ही मानने की, असत्य की ही सतत सत्य के रूप में भाव करने की आदत पड़ी हुई है। जैसा कोई व्यसनी व्यक्ति को, शराबी को कहेंगे कि शराब छोड़ दे, तो वो कहता है कि छोड़ना बहुत कठिन है। या क्यों कठिन है? क्योंकि वो आदत से लाचार है। इसलिए परमात्मा हमें कठिन लगता है या सत्य कठिन लगता है, परंतु हम थोड़ा भी विचार नहीं कर सकते हैं कि हम सत्य के बिना जी सकते हैं क्या। असत्य हमें जिला नहीं सकता है, असत्य का असत्य से हमारा पालन नहीं होता है, पालन सत्य से ही होता है। हमारे जीवन का अधिष्ठान आधार जो कुछ है वो सत्य ही है, उसी के आश्रित हम जीवन जी रहे हैं। परंतु हम असत्य का ही आश्रय करते हैं और असत्य से ही हम अपने जीवन को मान लेते हैं। इसलिए श्रुति कहती है कि नहीं, इस जगत के अंदर तुम्हारा कुछ नहीं है और तुम भी कुछ नहीं हो। जो कुछ है वो परमात्मा का है और परमात्मा ही है। इस प्रकार से भाव करोगे तो क्या होगा? तुम निर्विकारी बनोगे, निर्विकारी। पहले श्रुति कहती है कि ये सब परमात्मा का है, क्योंकि इसमें सब परमात्मा ही है। तुम्हारा घर परमात्मा का, तुम्हारा देह परमात्मा का, तुम्हारी इंद्रिया परमात्मा की, तुम्हारा मन परमात्मा का, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा की, और कहते हैं कि तुम भी परमात्मा ही हो। परंतु आप जानते नहीं हैं। इसमें श्रुति ये कहती है कि तुम अपने को जीव मत मानो, तुम अपने को देह मत मानो, तुम इस इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जा रहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान किया जा रहा है, कर्मेन्द्रियों के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, वह सब मैं हूं। क्योंकि उसके अंदर बाहर पत्ता, पेड़ का पत्ता दिखने के लिए पत्ता है, परंतु उस पत्ते में व्याप्त क्या है? रस, रस। रस नहीं हो तो पत्ते का कोई अस्तित्व है? उस संपूर्ण पेड़ के पत्ते में रस के अलावा कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, पेड़ के अंदर भी रस के अलावा कुछ है? हा? रस के अलावा कुछ नहीं है। रस को निकाल दोगे तो पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, ना पत्ते का अस्तित्व है। उस रस में पेड़ भास रहा है, उस रस में पत्ता भास रहा है, और उस रस को प्राप्त करने के लिए पत्ते को निचोड़ना पड़ता है, है ना? तब रस दिखाई देता है। बिना पत्ते को निचोड़े उसमें रस आपको व्यक्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से परमात्मा भाव करने का अर्थ क्या है मालूम है? परमात्मा भाव करने का अर्थ है कि संसार को निचोड़ना। परमात्मा भाव क्या करता है? तुम्हारे काम भाव को, तुम्हारे अहम भाव को, तुम्हारे मम भाव को, तुम्हारे लोभ भाव को, क्रोध भाव को, सभी को क्या करता है? तू कामने दिए भरीला विठले, काम क्रोधे के लिए घर रीते। ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं? निचोड़े जाते हैं, अर्थात इनका अस्तित्व समाप्त होता है। इसलिए श्रुति कहती है कि तुम कण कण में परमात्मा भाव करो। जब तुम ब्रह्म में जगत भाव कर सकते हो, आत्मा में जीव भाव, देह भाव, मनुष्य भाव, कर्ता भोक्ता भाव जब तुम कर सकते हो, तो क्या तुम देह में, जीव में आत्मभाव नहीं कर सकते हैं? ब्रह्म भाव नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। श्रुति कहती है कि यदि तुम्हें जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन को आनंदमय बनाना है, जीवन को अमृतमय बनाना है, भय से मुक्त होकर जीना है, तो उपाय यही है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। उस परमात्मा भाव से भावित होकर के इस संसार को क्या करो? त्याग करो। तेन का मतलब परमात्म भावेन, परमात्म चिंतनेन, परमात्म नामस्मरणेन आदि। आप एक विचार करो और अनुभव भी करो। आप राम 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 करते रहे तो दूसरा छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छोड़ना पड़ रहा है क्या छूट रहा है? श्रुति शर्त यही कहती है कि पहले तुम परमात्मा का संसार को छोड़ो नहीं कह रही है। क्यों नहीं कह रही है? अरे संसार है ही नहीं श्रुति में। श्रुति के दृष्टि से संसार नहीं तो छोड़ने की बात क्यों करेगी? इसलिए श्रुति आदेश परमात्मा के ग्रहण का देती है, परमात्मा के ज्ञान का देती है। संसार छोड़ने की बात श्रुति कर भी नहीं सकती है, क्योंकि छोड़ा तो तब जाता है कि जब वो हो, है ना? कोई कोई अब भिखारी है, सन्यासी है, सन्यासी बन गया, उसने कहा कि महाराज मैंने सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया। हमने पूछा कि भाई क्या छोड़ा? घर छोड़ा? कहा कि महाराज तीन तीन तस्मे का घर था, दो गिर गए थे, एक गिरने वाला ही था। क्या? दो गिर गए थे और एक गिरने वाला ही था। पत्नी थी नहीं, शादी नहीं हुई थी, बाल बच्चे थे। जब शादी नहीं हुई थी बाल बच्चे कहां से आए थे? कहा कि कुछ खेती बाड़ी थी नहीं, वो तो मेरे बाप ने शराब पी करके सब पहले ही खत्म कर दिए थे। तो क्या भाई छोड़ा तुमने? क्या छोड़ा? था ही नहीं। अब वो सन्यासी का कोई महत्व होगा क्या? त्याग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि त्यागने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उसको त्यागी कैसा कहा जाएगा? परंतु यह है कि परमात्मा को ग्रहण करने से, परमात्मा को ग्रहण कर रहा है इसलिए संसार को छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? त्यागी भी है, समझ लीजिए। परमात्मा का स्मरण करोगे तो तुम्हें त्यागी बनने की जरूरत नहीं, त्यागी हो जाओगे। श्रुति की ये युक्ति है। देखो गांधी जी थे और मदन मोहन मालवीय जी थे, तो गांधी जी कहते हैं कि परदेशियों के कपड़े का त्याग करो। क्या करो? ये जो परदेशी जो कपड़े आ रहे हैं इनको छोड़ो, पहनना इसको बंद करो, इसको खरीदना बंद करो। और मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं भाई स्वदेशी ही पहनो। वो नहीं कहते थे कि परदेशियों का त्याग करो, स्वदेशी ही पहनो। जेल गांधी जी को होती थी, मदन मोहन मालवीय जी को कभी जेल में जाना ही नहीं पड़ा। तो किसी ने पूछा कि बात आप भी वही करते हैं और गांधी जी भी वही करते हैं, परंतु गांधी जी को जेल क्यों जाना पड़ता है और आपको कभी कांग्रेस सरकार कभी जेल में नहीं डालती है, क्या कारण? क्या बात तो दोनों हम ये कही करते हैं, परंतु गांधी जी की बात इनके कानून के विरोध में जाती है और मेरी बात जो है इनके कानून का विरोध नहीं करती है। क्या? इसलिए मेरे को वो पकड़ नहीं सकते। श्रुति यही बात करती है, क्योंकि संसार को छोड़ने की बात करेंगे तो तुम लोगों को बुरा लगेगा। क्या बुरा लगता है कि नहीं? बुरा लगता है, इसलिए तो महात्माओं के पास कोई जाते नहीं, क्योंकि उनको पहला डर लगता है कि बाबा जी के पास जाएंगे तो बाबा जी यही कहेंगे, इसलिए नहीं जाना ही अच्छा है। सती इसलिए कहती है कि क्योंकि श्रुति जानती है कि छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं भाई, तो छोड़ने की बात करना ही क्यों है। हाँ, जो नहीं ग्रहण कर रहे हैं उसको ग्रहण करने के लिए आग्रह करती है। इसलिए कहा कि तुम ब्रह्म हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम अमृत स्वरूप हो, परंतु तुम्हें मालूम नहीं है। क्या? इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। इसलिए दुख का कारण तुम जो आप जो हो उसको नहीं जानते हो, इसलिए दुखी हो। इसलिए इस दुख का कारण है अज्ञान। तो क्या करो? उस अज्ञान का त्याग करो। और जिस अज्ञान के कारण आपके अंदर संसार भाव बैठा हुआ है, दिय भाव बैठा हुआ है, भोग भाव बैठा हुआ है, विषय भाव बैठा हुआ है, आदि आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव बैठा हुआ है, परमात्मा के चिंतन से इन भावों का त्याग करो। परमात्म भाव करो सभी में। देखो, आप अनुभव कर लो, आपके मन में बहुत दूषित भाव आ गया, वो आएगा, क्योंकि अंदर जो संस्कार है रजोगुणात्मक, तमोगुणात्मक, सत्वगुणात्मक, उनका हमेशा ही चक्र चलता रहता है, गुणों का ही चक्र अंदर चलता रहता है, और उसके अनुसार संस्कारों का उसके साथ संस्कार भी घूमते रहते हैं, और उन संस्कारों से ही हमारे अंदर भावनाएं बनती जाती है, इच्छाएं बनती जाती है, कामनाएं बनती जाती है। वो आएगा, उसको तुम किसी हालत में नहीं रोक सकते हो। रोकने का तुम्हारे पास एक ही साधन है। क्या साधन है? परमात्मा का संग, सत का संग। यदि तुम सत का संग नहीं करोगे तो असत में तो तुम्हें बहना ही बहना है। इसलिए श्रुति कहते हैं कि तुम परमात्मा को पकड़ो, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, और उस परमात्मा का आश्रय करके असत्य का त्याग करो। आपके मन में काम आ गया, जैसा ही काम आ गया उसी समय तुम राम 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 करते जाओ। काम का शमन होता है कि नहीं अनुभव करो। क्रोध आ गया, आप राम 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 करते जाओ, क्रोध शांत होता है कि नहीं देखो, अनुभव करके देखो। वही बात श्रुति कहती है, काम को छोड़ो नहीं कहती है, क्रोध को छोड़ो नहीं कहती है, मुंह को, बाल बच्चों को, घर लार को, किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहती है, परंतु परमात्मा का स्मरण करो, चाहे वो नाम के माध्यम से हो, रूप के माध्यम से हो, गुण के माध्यम से हो, स्वरूप के माध्यम से हो, माध्यम कोई भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं है। नाम स्मरण करोगे तब भी परमात्मा ही होगा, गुणों का चिंतन करोगे तब भी परमात्मा ही होगा, क्योंकि अधिष्ठान तो सभी का परमात्मा ही है। वो कहते हैं एक बार राम तीर्थ जी अमेरिका गए थे और बड़ा उनका भाषण चल रहा था और लोग बड़े उनके भाषण से प्रभावित थे, बड़े बड़े लोग उनका भाषण सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए आते थे और बड़ी वहां उनकी कीर्ति हो गई। एक दिन राम तीर्थ जी ऐसे अपने मस्ती में आए और घूमने के लिए निकले अपने मस्ती में, और संयोग से जो एक वेश्याओं का मोहल्ला था उस मोहल्ले में चले गए। उनको नहीं मालूम था। और उस वेश्याओं के मोहल्ले में जब चले गए, उसमें उनका उनकी कीर्ति तो सुनी थी उन लोगों ने भी। एक बड़ी सुंदर युवती थी वेश्याई, पर बड़ी सुंदर, उसने अपने घर के मकान के छज्जे से इस महात्मा को चलते हुए देखा, तो उसके मन में ये भाव आ गया कि इधर यदि महात्मा को लोगों ने देखा और लोग देखेंगे तो इस महात्मा को तो बड़ा कलंक लग जाएगा, ये तो बड़ा विद्वान है, अमुक है तमुक है, और ये इस वेश्याओं के मोहल्ले में क्यों घूम रहा है। इसलिए उसने ये सोच करके कहा कि इनको सचेत करना चाहिए और इनको वापस भेजना चाहिए। इसलिए उन्होंने आवाज दी ऊपर से, क्या परंतु आपने मस्ती में थे। फिर दो तीन बार आवाज दिए तो उन्होंने सुना, इधर उधर देखा तो कहीं नहीं, तो कहा कि महाराज जी मैं ऊपर से बोल रही हूं। क्या महाराज जी? उसने कहा कि महाराज जी मैं ऊपर से बोल रही हूं। तो रामतीर्थ जी ने ऐसा ऊपर देखा तो वो छज्जे में खड़ी थी, बड़ी सुंदर थी। कहा कि महाराज आपका इस मोहल्ले में गुजरना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं ये मोहल्ला जो है वेश्याओं का है, और यहां से यहां आप घूमोगे तो आपकी अपकीर्ति हो जाएगी, इसलिए आप वापस लौट जाओ। रामतीर्थ जी वहीं सुन रहे हैं, ना पीछे मुड़ रहे हैं ना कुछ, उसको ही देखते रहे हैं। और वो बोलती गई, बताती गई, वापस जाओ कहती गई। रामतीर्थ जी वहीं खड़े हैं। तो उस वेश्या के मन में आया, कहा कि शायद आज संत का मन बिगड़ गया लगता है, मेरे को लगातार देख रहे हैं, अपलक देख रहे हैं और वापस भी नहीं जा रहे, इसका मतलब है कि आज इनका मन बिगड़ गया। कहा कि महाराज मेरे को इस प्रकार से आप देख रहे हो, ऐसा देखना ठीक नहीं है, थोड़ी सी कड़क आवाज में बोला। तो रामतीर्थ जी जोर जोर से हंसने लगे। वेश्या कहती है कि मैं ये इनको डांट रही हूं और ये हंस रहे हैं। कहा कि महाराज क्यों आप हंस रहे हैं? मैं इतना जोर जोर से आपको डांट रही हूं, बता रही हूं, फिर भी आप मान रहे हैं मेरी बात को। तो रामतीर्थ जी कहते हैं, अरे पगली, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे प्रभु ने तुझे इतनी सुंदर वाणी दी, इतना सुंदर रूप दिया, वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा। क्या जिसने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया जी, इतना सुंदर वाणी दी, इतनी सुंदर इंद्रिया दी, वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा, उस पर मेरी परमात्मा की वाणी कितनी सुंदर होगी, मैं तो ये सोच रहा था। अब बताओ, काम की भावना वेश्या के अंदर थी, पर क्या रामतीर्थ के अंदर थी? क्यों नहीं थी? सामने तो वेश्या है, रूपवान है, युवती है, परंतु काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें भी रामतीर्थ जी का परमात्मा का स्मरण था, वो परमात्मा की तरफ दृष्टि दिया जा रही थी, उस परमात्मा के रूप को देख रहे थे, उस रूप के पीछे परमात्मा का रूप है, छिपा हुआ है। परंतु हम किसका देखते हैं? संसार का देखते हैं। श्रुति कहती है कि ये संसार का देखना तब बंद हो जाएगा कि जब परमात्मा को स्वीकार करोगे। तेन त्यक्तेन भुंजिता, यहां त्याग क्या है? त्याग ही भोग है। क्या जब त्याग होगा तो भोग साथ ही साथ है, दो पहलू है ये कही सिक्के की। परमात्मा के ही दो पहलू है, इसलिए तो भगवान ने भी गीता ने कहा कि त्यागात शांतिर अनंतरम, क्या जिस क्षण में त्याग होता है उसी क्षण में शांति मिल जाती है, और शांति मिलती है तो आनंद, शांति में ही आनंद है कि ये अशांति में आनंद है? शांति का मतलब क्या? शांति का मतलब होता है अंतकरण, अंतकरण अर्थात अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार स्थिर हो जाना, उसके अंदर गुणों की संस्कारों की विषयों की भोगों की आदि किसी प्रकार का विकृति न होना, विकार न होना।